अध्याय 73 दाऊद के अंतिम वर्ष। ये अध्याय दूसरा शमूएल 24, पहला इतिहास 21, 28-29 एक राजा पर आधारित है। अबशालोम की पराजय राज्य में तत्काल शांति लेकर नहीं आई। प्रजा का इतना बड़ा भाग विद्रोह में सम्मिलित हुआ था कि दाऊद गोत्रों से निमंत्रण प्राप्त हुए बिना राजधानी लौटकर अपने अधिकार को पुनः ग्रहण नहीं करना चाहता था। अबशालोम की पराजय के पश्चात उत्पन्न अव्यवस्था में राजा को वापस बुलाने की कोई तत्काल और कत्संकल्प कार्यवाही नहीं हुई थी, और अंत में जब यहूदा ने दाऊद को वापस ले आने का दायित्व उठाया तो अन्य गोत्रों की ईर्ष्या जागृत हो गई और एक प्रतिविरोध उत्पन्न हो गया, लेकिन इसे जल्द ही शांत कर दिया गया और इज़राइल में शांति लौट आई। दाऊद का इतिहास। मनुष्य में सबसे अधिक वांछनीय अधिकार, धन दौलत और सांसारिक सम्मान से संबंधित आत्मा को जोखिम में डालने वाले खतरों के लिए अब तक की दी गई साक्षियों में सबसे प्रभावशाली साक्षी है। ऐसी परीक्षा में खरे उतरने के लिए मनुष्यों को तैयार करने हेतु इससे अधिक अनुकूल अनुभव से बहुत कम शायद ही होकर निकले हैं। चरवाहे के तौर पर दाऊद का प्रारंभिक जीवन दीनता, धैर्यशील श्रम और भेड़ों के लिए उसकी कोमलतापूर्ण चौकसी के सबकों के साथ, पहाड़ों के एकांत में प्रकृति के साथ उसका संपर्क, संगीत और काव्य के लिए उसकी प्रतिभा को विकसित करते हुए और उसके विचारों को सृष्टिकर्ता की ओर ले जाते हुए, साहस, सहनशीलता, धैर्य और परमेश्वर में विश्वास का अभ्यास कराते हुए बीहड़ में उसके जीवन का चिरकालीन अनुशासन, परमेश्वर द्वारा इज़राइल के सिंहासन के लिए तैयारी के रूप में नियुक्त किया था। दाऊद ने परमेश्वर के प्रेम के अनमोल अनुभवों का आनंद लिया था और वह उसकी आत्मा की बहुतायत से आशीषित था। शाऊल के इतिहास में उसने निरी मानवीय बुद्धिमत्ता की महत्वहीनता को देखा था, फिर भी सांसारिक सफलता और सम्मान ने दाऊद के चरित्र को इतना दुर्बल कर दिया था कि वह बार बार प्रलोभनकर्ता के वशीभूत हो जाता था। मूर्ति पूजकों के साथ मेलजोल ने उन्हें जातीय रीति रिवाजों का अनुसरण करने को इच्छित किया और सांसारिक ख्याति की महत्वाकांक्षा को सुलगाया। यहोवा की प्रजा के तौर पर इज़राइल का सम्मान किया जाना था, लेकिन जब अभिमान और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई, इज़राइल पहले से प्राप्त प्रतिष्ठा से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अन्य जातियों में अपनी प्रतिष्ठा की अधिक चिंता थी। ये भावना निस्संदेह ही प्रलोभन को आमंत्रित करती थी। पराये देशों से अपने राज्य का विस्तार करने की दृष्टि से दाऊद ने उपयुक्त आयु वाले सभी पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर अपनी सेना में वृद्धि करने का दृढ़ संकल्प किया। इसे लागू करने के लिए जनगणना करना आवश्यक होगा। राजा की ओर से यह कार्यवाही अभिमान और महत्वाकांक्षा से प्रेरित थी। लोगों का संख्याकन दाऊद के सिंहासन ग्रहण करने के समय में राज्य की दुर्बलता और उसके शासनकाल में उसकी शक्ति और समृद्धि के बीच अंतर को दर्शाता। इससे राजा और प्रजा दोनों का आत्मविश्वास, जो पहले से ही बहुत था, और बढ़ जाता। पवित्र शास्त्र में लिखा है, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइल की गिनती ले। दाऊद के समय में इज़राइल की समृद्धि उसकी सेना की शक्ति या राजा की योग्यता के कारण नहीं, वरन परमेश्वर की आशीष के कारण थी। लेकिन राज्य के सैन्य साधनों में वृद्धि से पड़ोसी राज्यों पर यह प्रकट होता कि इज़राइल का विश्वास उसकी सेनाओं में था, न कि यहोवा की सामर्थ्य में। हालांकि इज़राइल के लोग अपनी जातीय श्रेष्ठता पर गर्व करते थे, लेकिन सैन्य सेवा के विस्तार के लिए दाऊद की योजना से वे प्रसन्न नहीं थे। प्रस्तावित नामांकन के कारण बहुत असंतोष फैला। इस कारण से याजकों और न्यायियों के स्थान पर, जिन्होंने पहले जनगणना की थी, सेना के अधिकारियों को नियुक्त करना आवश्यक समझा गया। इस विशेष कार्य का लक्ष्य धर्मतंत्र के सिद्धांतों के प्रत्यक्ष रूप से विपरीत था। इससे पहले योआब ने स्वयं को अनैतिक प्रमाणित किया था, लेकिन उसने भी आपत्ति जताई। उसने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ दे, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इज़राइल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? फिर भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इज़राइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। जब दाऊद के पाप को धिक्कारा गया, संख्याकन समाप्त नहीं हुआ था। स्वयं को दोषी स्वीकार कर दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया है वो महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। अगले दिन प्रातःकाल दाऊद को भविष्यवक्ता गाद द्वारा ये संदेश मिला, यहोवा यों कहता है कि चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इज़राइली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। राजा ने उत्तर दिया, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं क्योंकि उसकी दया महान है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। देश में मरी फैल गई और इज़राइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। अभी इस महान कष्ट ने राजधानी में प्रवेश नहीं किया था कि दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम की ओर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिये टाट पहने हुए मुंह के बल गिर पड़े थे। राजा ने इज़राइल के पक्ष में परमेश्वर से विनती की, जिसने प्रजा को गणना करने को कहा, क्या वो मैं नहीं? हां, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है वो तो मैं ही हूं, परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध न हो कि वे मारे जाएं। जनगणना के किए जाने से लोगों में मनमुटाव उत्पन्न हो गया, फिर भी उन्होंने स्वयं उन्हीं पापों को संजोया था जिन्होंने दाऊद के द्वारा की गई कार्यवाही को प्रेरित किया था। अबशालोम के पाप के माध्यम से परमेश्वर ने दाऊद को दंडाज्ञा दी और इसी प्रकार दाऊद की गलती के माध्यम से उसने इज़राइल के पापों को दंडित किया। विनाशक दूत ने अपनी कार्यवाही यरूशलेम के बाहर ही स्थगित कर दी थी। उस समय यहोवा का दूत यबूसी ओरनान के खलिहान के पास खड़ा था। भविष्यवक्ता के निर्देशानुसार दाऊद पहाड़ पर गया और वहां उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वो महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। जिस स्थान पर वेदी खड़ी की गई इस समय से हमेशा पवित्र भूमि माना जाना था, ओरनान द्वारा राजा को उपहार के रूप में दिया गया, लेकिन राजा ने उसे इस प्रकार लेना स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मैं अवश्य इसका दाम ही देकर इसे मोल लूंगा, जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और न बिना मोल के होम बलि चढ़ाऊंगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 600 शेकल सोना तोल दिया। ये स्थान जहां अब्राहम ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए वेदी बनाई थी अभी भी स्मरण किया जाता था, और अब ये इस महान छुटकारे के कारण पवित्र ठहराया गया, और आने वाले समय में ये सुलेमान द्वारा निर्माण किए गए मंदिर का स्थान था। दाऊद के अंतिम वर्षों में एक विपत्ति और आनी थी। वो 70 वर्ष का हो गया था। उसके प्रारंभिक घुमक्कड़ जीवन की कठिनाइयां, उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां, बढ़ती आयु की चिंताएं और कष्ट, इन सब ने उसे दुर्बल कर दिया था। हालांकि उसका विवेक अभी स्पष्ट और दृढ़ था, बढ़ती आयु और निर्बलता के कारण उसकी अलगाव की इच्छा ने राज्य से घटित होने वाली चीजों का शीघ्र बोध नहीं होने दिया और उसके सिंहासन की छत्रछाया में ही उपद्रव उत्पन्न हो गए। फिर से दाऊद के पिता के तौर पर दयालुतापूर्ण व्यवहार का परिणाम प्रकट हुआ। अदोनिया, जो अब सिंहासन के लिए आकांक्षा कर रहा था, व्यक्तित्व और आचरण में मिला मनुष्य था, लेकिन वो सिद्धांतहीन और उतावला था। उसकी किशोरावस्था में उस पर बहुत कम नियंत्रण रखा गया था, क्योंकि उसके पिता ने जन्म से लेकर कभी भी ये कहकर उदास नहीं किया था, तूने ऐसा क्यों किया? अब उसने परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध उपद्रव किया जिसने सुलेमान को सिंहासन के लिए नियुक्त किया था। स्वाभाविक प्रतिभा और धार्मिक विशेषता को देखते हुए सुलेमान इज़राइल का शासक बनने के लिए अपने भाई से अधिक योग्य था, और यद्यपि परमेश्वर के चुनाव का स्पष्ट संकेत दे दिया गया था, फिर भी अदोनिया के कई समर्थक थे। योआब, हालांकि बहुत से अपराधों का दोषी था, इससे पहले सिंहासन के प्रति ईमानदार रहा था, लेकिन अब वो सुलेमान के विरुद्ध षड्यंत्र में सम्मिलित हो गया, और ऐसा ही याजक एब्यातार ने भी किया। विद्रोह की तैयारी पूरी हो चुकी थी। नगर के बिल्कुल बाहर षड्यंत्रकारी अदोनिया को राजा घोषित करने के लिए एक भोज पर एकत्रित हुए थे, जब उनकी युक्तियों को कुछ विश्वसनीय व्यक्तियों की तात्कालिक कार्यवाही द्वारा विफल कर दिया गया। इन व्यक्तियों में प्रमुख थे याजक सादोक, भविष्यवक्ता नातान और सुलेमान की मां बतशेबा। उन्होंने राजा को राज्य में हो रही घटनाओं का वर्णन किया और उसे स्मरण कराया कि पवित्र निर्देश के अनुसार सुलेमान को सिंहासन का उत्तराधिकारी होना था। दाऊद ने तुरंत सुलेमान के पक्ष में स्वेच्छा से सिंहासन छोड़ दिया। षड्यंत्र को कुचल दिया गया, उसके प्रमुख कर्ताओं को मृत्युदंड दिया गया। एब्यातार की दाऊद के प्रति पूर्व स्वामी भक्ति और कार्यभार का मान रखते हुए उसका प्राण नहीं लिया गया, लेकिन उसे महायाजक के पद से नीचे उतार दिया गया और ये पद सादोक के वंश को दे दिया गया और अदोनिया को उस समय के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन दाऊद की मृत्यु के बाद उन्हें अपने अपराध के लिए दंड दिया गया। दाऊद के पुत्र पर दंडाज्ञा के क्रियान्वयन ने पिता के पाप के प्रति परमेश्वर की घृणा की साक्षी देने वाले चौगुना दंड को संपन्न किया। दाऊद के शासनकाल के प्रारंभ से ही परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करना उसकी सबसे वांछनीय योजना थी। हालांकि उसे अपनी योजना को क्रियान्वित कराने की अनुमति नहीं थी, उसने फिर भी उसके पक्ष में कम उत्साह और गंभीरता नहीं दर्शाई। उसने बहुतायत से बहुमूल्य सामग्री प्रदान की थी, सोना, चांदी, गोमेद, पत्थर, विभिन्न रंगों के पत्थर, संगमरमर और सबसे बहुमूल्य लकड़ी। और अब वो मूल्यवान खजाना जो उसने इकट्ठा किया था दूसरों के सुपुर्द किया जाना था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के प्रतीक वाचा के संदूक के लिए किसी और को भवन तैयार करना था। जब दाऊद ने देखा कि उसका समय निकट था, उसने इज़राइल के प्रधानों को बुलाया और राज्य के सब भागों से प्रतिनिधियों को भी बुलाया, ताकि वे न्यास में इस धरोहर को ग्रहण कर सकें। उसकी इच्छा थी कि वो अपनी मृत्यु पूर्व उन्हें ये दायित्व सौंपे और इस महान कार्य को संपन्न कराने में उनका समर्थन और सहमति को प्राप्त करे। अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण ये अपेक्षा नहीं की गई थी कि वो व्यक्ति रूप में इस अंतरण के लिए उपस्थित होगा, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा उस पर उतरी और अपने स्वाभाविक सामर्थ्य और उत्साह से बढ़कर उत्साह के साथ वो अंतिम बार अपनी प्रजा को संबोधित कर सका। उसने मंदिर बनाने की अपनी स्वयं की अभिलाषा और परमेश्वर की आज्ञा कि इस कार्य को उसके पुत्र सुलेमान को सौंप दिया जाए के बारे में भी बताया। ईश्वरीय आश्वासन ये था, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। यदि वो मेरी आज्ञाओं और नियमों को मानने में आज के दिन के समान दृढ़ रहे तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। दाऊद ने कहा, इसलिए अब इज़राइल अर्थात परमेश्वर की प्रजा की दृष्टि में और परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। दाऊद ने अपने निजी अनुभव से जाना था कि जो परमेश्वर को छोड़ देता है उसका मार्ग कितना कठिन हो जाता है। उसने व्यवस्था भंग करने की दंडाज्ञा को महसूस किया था और आज्ञा उल्लंघन के प्रतिफल को भुगता था। उसकी संपूर्ण आत्मा इस बात के लिए सचेत थी कि इज़राइल के अगुवे परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो और ये कि सुलेमान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे और उन पापों से दूर रहे जिनके कारण उसके पिता की सत्ता कमजोर हो गई, उसका जीवन कष्टपूर्ण हो गया और परमेश्वर का निरादर हुआ। दाऊद जानता था कि सुलेमान के उच्च पद पर रहते हुए उस पर आने वाले प्रलोभनों का सामना करने के लिए हृदय की दीनता, परमेश्वर में स्थायी विश्वास और सदैव की जागरूकता की आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसे विशिष्ट मनुष्य शैतान के तीरों के निशाने पर होते हैं। अपने पुत्र की ओर मुड़ते हुए, जिसे सिंहासन का उत्तराधिकारी मान लिया गया था, दाऊद ने कहा, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने के लिए चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बांधकर इस काम में लग जा। दाऊद ने सुलेमान को पवित्र प्रेरणा के द्वारा प्रकट किए गए काम में आने वाले सभी उपकरण, प्रत्येक भाग के नमूने के साथ मंदिर निर्माण के लिए विस्तारपूर्वक निर्देश दिए। सुलेमान अभी नौजवान ही था और परमेश्वर की प्रजा के शासन में और मंदिर निर्माण में उस पर आने वाले भारी उत्तरदायित्व से पीछे हटा। दाऊद ने अपने पुत्र से कहा, हे आव बांध और दृढ़ होकर इस कार्य में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है, तुझे निराश नहीं करेगा और न तुझे त्यागेगा। दाऊद ने फिर से मंडली से विनती की, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि ये भवन मनुष्य के लिए नहीं यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे परमेश्वर के भवन के लिए तैयारी की है। और फिर उसने उन सभी वस्तुओं को गिनाया जो उसने एकत्रित की थीं। और तो और उसने कहा, मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए एकत्रित किया है उस सबसे अधिकर में अपना निज धन भी, जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए देता हूं। अर्थात 3,000 किक्कार लगभग 110 टन ओपीर का सोना और 7,000 किक्कार लगभग 260 टन तपाई हुई चांदी, जिससे कक्षों की दीवारें गढ़ी जाएं। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? उसने एकत्रित जनसमूह से पूछा जो अपने उदार उपहार लेकर आए थे।
मंडली से एक तत्पर उत्तर मिला। तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इज़राइल के गोत्रों के हाकिमों और सहस्रपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने स्वेच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5,000 किक्कार लगभग 490 टन और 10,000 दरकमोन लगभग 84 किलो सोना, 10,000 किक्कार लगभग 375 टन चांदी, 18,000 किक्कार लगभग 375 टन पीतल और 1,00,000 किक्कार लगभग 3,750 टन लोहा दिया। जिनके पास मणि थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेर्शोनी यहीएल के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सभी के अपकमिंग मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलते हैं और तू सभी के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छाओं से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले? तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेशी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वो जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है वो तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और शुचिता से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की शुचिता और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहां उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखाओं अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वो तेरी आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को मानता रहे और ये सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा को दंडवत किया। बड़ी लगन से दाऊद ने मंदिर के निर्माण और सौंदर्यकरण के लिए बहुमूल्य वस्तुओं का संचय किया। उसने आनंद और प्रशंसा के भजनों की रचना की जो आने वाले वर्षों में भवन के प्रांगणों में गूंजने थे। और अब परमेश्वर में उसका हृदय प्रसन्न हुआ क्योंकि पितरों के प्रधानों और इज़राइल के हाकिमों ने उसके निवेदन का इतनी शिष्टता से उत्तर दिया और स्वयं को उस महत्वपूर्ण कार्य के लिए समर्पित किया जो उनके सामने था। और जैसे जैसे उन्होंने अपनी सेवाएं दी, वे और अधिक कार्य करने की इच्छा करने लगे। अपने निजी धन संपत्ति को शाही खजाने में देकर उन्होंने भेंट में बहुत वृद्धि की। परमेश्वर के भवन के लिए सामग्री जुटाने में दाऊद ने स्वयं की अयोग्यता को गहराई से महसूस किया था और उसके राज्य के अधिकारियों के तत्पर उत्तर में उनकी स्वामी भक्ति की अभिव्यक्ति ने दाऊद को प्रसन्नता से भर दिया जब उन्होंने स्वेच्छा से अपनी निधि यहोवा के लिए अर्पण की और स्वयं को उसकी सेवा के लिए समर्पित किया। लेकिन वो परमेश्वर ही था जिसने लोगों को यह प्रवृत्ति प्रदान की। मनुष्य को नहीं वरन ईश्वर को महिमा पहुंचनी चाहिए। उसी ने लोगों को पृथ्वी का बाहुल्य प्रदान किया था और उसकी पवित्र आत्मा ने उन्हें स्वेच्छा से मंदिर के लिए अनमोल वस्तुएं लाने के लिए सहमत किया था। सब कुछ परमेश्वर का था। यदि परमेश्वर का प्रेम लोगों के हृदयों को प्रभावित नहीं करता तो राजा के प्रयत्न व्यर्थ होते और मंदिर का निर्माण कभी नहीं हो पाता।
मनुष्य जो भी परमेश्वर की बहुतायत में से प्राप्त करता है वो परमेश्वर का ही है। पृथ्वी की सुंदर और मूल्यवान वस्तुएं मनुष्य के हाथ में उसकी परीक्षा लेने के लिए रखी गई हैं, ताकि वो उसकी कृपा की सराहना और उसके प्रेम की गहराई को सुन सके। चाहे वो धन का खजाना हो या ज्ञान और बुद्धि का, दोनों को परमेश्वर के कदमों में ऐच्छिक भेंट के तौर पर रखना है और देने वाले को दाऊद के साथ कहना है, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। जब उसे लगा कि मृत्यु निकट है, दाऊद के हृदय पर जो बोझ था वो अभी भी सुलेमान और इज़राइल के राज्य के लिए था, जिसकी समृद्धि व्यापक रूप से राजा की कर्तव्य परायणता पर निर्भर थी। और उसने सुलेमान को आज्ञा दी और कहा, मैं संसार की रीति से कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों और आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो, और यहोवा अपना वो वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल में घटी कभी न होगी। पहला राजाओं 2:1-4। दाऊद के अंतिम वचन, जैसा कि उल्लिखित है, एक गीत है, विश्वास का गीत, ऊंचे सिद्धांत का गीत और अनश्वर विश्वास का गीत। यिशै के पुत्र की ये वाणी है, इस पुरुष की ये वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझमें होकर बोला कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वो मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल न हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वो उसको प्रकट न करे
तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। दूसरा शमूएल 23 आयत 1-5। दाऊद का महापतन हुआ था, लेकिन उसके द्वारा किया गया प्रायश्चित हार्दिक था। उसका प्रेम उत्साहपूर्ण था और उसका विश्वास दृढ़ था। उसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, इसलिए उसने बहुत प्रेम किया। लूका 7 आयत 47। दाऊद के भजन सचेतन अपराध बोध की गहराइयों और आत्म तिरस्कार से लेकर उच्चतम विश्वास और परमेश्वर के साथ उत्कृष्ट संपर्क तक के अनुभव की संपूर्ण श्रृंखला से होकर निकलते हैं। उसके जीवन का इतिहास यही बताता है कि पाप केवल दुख और अपमान लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उसकी करुणा अगाध गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। और ये कि विश्वास प्रायश्चित करने वाले प्राणियों को ऊपर उठाता है ताकि वे परमेश्वर के पुत्र ठहराए जा सकें। परमेश्वर के वचन में दिए गए आश्वासनों में ये विश्वसनीयता, न्यायपरायणता और परमेश्वर की अनुबंधित करुणा की सबसे प्रबल साक्षी है। मनुष्य छाया की रीति पर ढल जाता है और कहीं ठहरता नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण कर उन पर चलते हैं। अय्यूब 14 आयत 2, यशाया 40 आयत 8, भजन संहिता 103 आयत 17-18। जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, सभूपदेशक 3 आयत 14। दाऊद और उसके घराने से की गई प्रतिज्ञाएं महान हैं, प्रतिज्ञाएं जो सनातन युगों की बाट जोहती है और मसीह में परिपूर्ण होती है। प्रभु ने घोषणा की,
मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी, मेरी करुणा और सच्चाई उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा वो शक्तिशाली होगा। मैं समुद्र में उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वो मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। भजन संहिता 8 आयत 3-28। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। भजन संहिता 8 आयत 29। वो प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे, तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा, तब तक शांति बहुत रहेगी। वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा, तब तक उसका नाम नित्य होता रहेगा। उसके लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे, सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। भजन संहिता 72 आयत 4। 3:17। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। यशाया 9 आयत 6, लूका 1 आयत 32-33।